یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 671
4th of November year 2004 my wise in St. Antonio in Texas USA. یا علی مدد سکھی آباد رو مولا ایمان زیادہ کرے ایمان جی سلامتی دے روزی کمانے میں برکت دے دسوندی بنائے فرمان بردار مومن بنائے نیک مراد پوری کا آپ کو دیکھ کر خوش ہوا جی کہو رے جیو تمہیں اے کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سروا جی دنیا نو لوب جیوڑو کروان لاگو جی دنیا نے لوبے بھر میں بھولیو جی حضر امام کے سلام اے مومنو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے پیر پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو مولانا امام سلطان محمد شہدتار فرمایا مومن کو لازم ہے کہ ہر روز تھوڑا ٹائم ایکانت میں بیٹھ کے یہ وچار کرے کہ میں کیا ہوں کون ہوں مجھے کس نے پیدا کیا میرا فرض کیا ہے. مولا فرمایا ہر روز نہیں بنتا تو 8 دن میں ایک دفعہ ضرور سوچا کرو. مولا فرمایا اگر 8 دن میں نہیں بنتا تو 15 دن میں ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا خیال کرو. اے دین دارو کوئی آدمی کولسے کی کوٹھڑی میں جاوے اور سفید سوٹ پہنا ہوئے کہیں نہ کہیں داغ لگے گا. شراب خانے کے اندر جاوے شراب نہیں پیے تو شراب کی بو باس تو آئے گی. کل جگ کا زمانہ ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے. مومن کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے دین کے ورودھ ہے. میں ایسا کام نہ کروں کہ میرے مولا کو ناراض ہو جانے کی ضرورت پڑے. یہ دنیا کسی کی نہیں بنے نہ راجا کی نہ رانک کی. رانک کہتے ہیں بھکاری کو. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا ایک بھی آدمی نہیں کہ جس نے ساری زندگی سکھ کی گزاری ہوئے. کچھ نہ کچھ دکھ انسان کے پیچھے لگا ہے. میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دیندارو آج کے زمانے کے اندر انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں 99% پرابلمس ہیں. 99% جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے 1.5-2 برس کے اندر اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے اس کی پرابلمس شروع ہوتی ہیں. اور اس کی پرابلمس کیا ہیں؟ ٹوائز ہیں, گیم ہے, کھانا پینا ہے, کپڑے ہیں. اور ساری زندگی انسان کو پرابلمس ملتی رہتی ہے. 1% سکھ اور شانتی کا ہے جو ہم اپنی عبادت اور مذہب میں سے نکالتے ہیں. اے مومنوں ये जो 99% प्रॉब्लम्स हैं ये मिटने वाली नहीं, थोड़ी कम हो जाएंगी। 1% मजहब को इतना खींचो कि सारी प्रॉब्लम्स उसके नीचे आ जाएं। और ये जो मजहब है वो हमारे भलाई के लिए आया है। कभी कभी मैं वाजों में पूछा करता हूं मजहब की जरूरत क्या, मैं ये भी पूछा करता हूं कभी कभी कि आपको जितनी आपकी उम्र है 20 बरस 25 बरस 50 बरस 70 बरस 80 बरस आपकी उम्र जितनी इस मजहब में निकली आपको क्या मिला। 60 बरस का आदमी है उसको पूछता हूं कि 60 बरस तुझे हुए इस दुनिया में मजहब में क्या मिला। 10-15 बरस के बच्चों को तो शायद इतनी अकल नहीं है, लेकिन 20-25 बरस से इंसान को खुदा ताला ने जो सोच विचार का मादा दिया है उसमें कभी सोचा है कि मुझे इस मजहब में से मिला कुछ? और अगर नहीं मिला तो क्या मेरी जिंदगी बेफायदा गई? पहली चीज ये सोचो कि मजहब क्या है। आप फर्नीचर देख लेने जाओ और उसमें एक रेफ्रिजरेटर खरीदो $1,200 का एक फ्रिज खरीदो, उसकी वारंटी मिलती है और फिर उसकी बुक मिलती है कि इसको किस तरह हैंडल करना। कोई भी मशीनरी खरीदो, टीवी ले लो, रेडियो ले लो, कोई और कोई ऐसे चीजें ले लो, तो उसके साथ एक उसका पैम्फलेट होता है, ब्रोशर होता है, उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज इट। 110 वोल्ट की उसमें एनर्जी चाहिए, इतने उसके एम्पियरेज हैं, पहले ये स्विच करो फिर इस तरह करो, ये सारी चीजें वो पैम्फलेट में लिखी होती हैं। अगर उस पाए मुताबिक नहीं चले तो वो मशीन खराब हो जाएगी। खुदा ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसको समझाने वाले गुरु भी साथ भेजे, और वो गुरु जो थे वो नबी थे। 1,24,000 124,000 प्रॉफिट्स, 124,000। ऐसा कभी कभी हुआ है कि दो दो तीन तीन प्रॉफिट्स एट ए टाइम होते हैं, कोई इधर हुआ कोई उधर हुआ, लेकिन अल्लाह कहता है कि कोई कंट्री कोई नेशन मैंने बाकी नहीं छोड़ी कि जहां मेरा प्रॉफिट नहीं गया। ये गुरु जो थे हमारी इंसानी जिंदगी के गाइड थे, क्या खाओ तो क्या बने, क्या ना खाओ तो क्या बने। जिस तरह फूड के अंदर ये है, इसी तरह से हमारे सोच विचार के अंदर, हमारी अक्ल के अंदर, हमारी इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह से हम अपनी लाइफ गुजारें कि मुझे गम ना मिले, सुख और शांति मिले। हमारे एक बहुत बड़े इस्माइली दाई भी थे और वो हकीम भी थे, फिजिशियन था, उसका नाम था अबू अली सीना, एविसीना इंग्लिश में कहते हैं, उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। पेरिस कभी जाओ तो ब्रबोन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के अंदर उसका बुत लगा हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन एविसीना। 33 बरस की उम्र में गुजर गया लेकिन 111 किताबें लिखी उसने। इस उम्र में उसको लुकमान कहते थे, बहुत बड़ा आलिम हकीम था, और उसकी बातें सुन के इंसान को बहुत कुछ सीखना मिलता है, इस्माइली था। एक आदमी उसके पास आया, कहता शेख पेट दुखता है, नब्स देखी, क्या खाया? रोटी खाई, घी वाली? कहते नहीं, तनूर में पकी हुई थी लेकिन जरा जल गई थी। नौकर को कहा सुरमा लेके आओ। सुरमा आया तो उसको कहा कि आंखों में सुरमा डालो। कहते शेख पेट दुखता है। कहता हाँ, पहले मैं उसकी दवा करूं कि जिसके कारण से तेरा पेट दुखता है। तू देख रहा है कि ये जली हुई है फिर भी खा रहा है तो तेरी आंखों का कसूर है, इसलिए पहले सुरमा डालो। आप समझे इसमें से कुछ? हर एक्शन का एक रिएक्शन है, और अगर हम अपनी जीभ के स्वाद की खातिर या अपने लालच की खातिर या कोई बेवकूफी के कारण से हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि बाद में पछताते हैं। खाने पीने के अंदर भी ऐसी चीजें हैं कि जो दो चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको खाली बताना चाहता हूं ताकि हमें समझ आवे। छाछ पी रहे हो खाते वक्त तो खट्टी चीजें मत खाओ। छाछ पीनी है, दही खाना है तो उसके साथ नींबू अथना चटनी अचार इमली मत खाओ, लिवर खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारे मजहब के अंदर है, रूहानियत चाहिए तो रूहानियत के उसूल कायदे जुदे हैं। मजहब में आगे बढ़ना है तो उसके लिए फी दो, यानी उसके लिए कुर्बानी करो। अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो 7 वर्ष उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए तब जाके डॉक्टर बने। इंजीनियर बनना है तो 5 वर्ष का कोर्स है, अकाउंटेंट बनना है तो 4 वर्ष का अकाउंटेंट। इसी तरह से हर शय का एक ड्यूरेशन है। कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 6 महीने में आ जाते हैं, कोई ऐसे कोर्सेज हैं कि 10 वर्ष लगते हैं। मजहब हमको मिला है हमारी भलाई के लिए। खुदा ताला ने गुरु साथ भेजे, इन नबियों ने हमको हमारे जीवन गुजारने की सब चीजें हिदायतें की। नबियों ने खाने पीने की बातें की, कपड़े लत्ते की बातें की, फैमिली की बातें की, बिजनेस की बातें की, सोसाइटी की बातें की, और आकाबत के लिए क्या अच्छा है उसकी बातें की। मगर ये याद दिलाते रहे कि देखो बेटा, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो तो हमेशा के लिए तो नहीं आए ना, 5 बरस 7 बरस। ये दुनिया जो है वो यूनिवर्सिटी है। इधर कोई आदमी 10 बरस जीता है, कोई 100 बरस जीता है, लेकिन आखिर मर जाता है। और मौत एक ऐसी चीज है कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते मौत को मानते हैं। उसको पूछो खुदा है तो बोला आई डोंट बिलीव इन गॉड। आर यू गोइंग टू डाई वन डे? ऑफ कोर्स एवरीवन हैज टू डाई। ओह, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। 1962 में मैं अपनी वाइफ के साथ उजुम्बुरा से कैरो गया। मैं वर्ल्ड ट्रिप के ऊपर जा रहा था, बेल्जियम एयरलाइन थी। शाम को 4:30 बजे हम उठे, घंटे डेढ़ घंटे के बाद डार्क हो गया और उन्होंने अनाउंस किया कि हमको डिनर देंगे। उस वक्त वो जो DC-8 ये प्लेन था छोटा था, 2 सीटें इस तरफ थी, 2 इस तरफ थी, बीच में पैसेज था एल। हम दोनों जब अनाउंसमेंट हुई, डार्क भी हो गया, हमने अपनी तस्बीहें निकाली और हमने दुआ पढ़ी। टाइम और भी था, दूसरी दुआ भी पढ़ ली, एक दो तस्बीहें निकाली। डिनर आया, हम डिनर खाने लगे। डिनर पूरा हुआ, मेरी लेफ्ट साइड में आइल के उस तरफ एक आदमी हमको ऐसा करके देख रहा था, वॉच कर रहा था। राहत हुई तो कहते एक्सक्यूज मी सर, बोला यस। आर यू प्रेइंग? बोला यस। डू यू बिलीव इन गॉड? बोला यस। आई डोंट बिलीव इन गॉड। आई सेड वेल इट इज योर ओपिनियन। अब वो मेरे मुंह में उंगली डाल रहा था कि मैं कुछ बोलूं, और मेरे हाथ में तस्बीह थी, मैं अवॉइड करना चाहता था, लेकिन मुझे कहता है कि Do you really think there is God? Maulana Imam Jafar Sadiq mujhe yaad aa gaye. Maulana Imam Jafar Sadiq alaihi salam farmate hain ki jo khuda ko nahi manta uske saath kabhi bhi khuda ki discussion mat karo. Wo khuda ko nahi manta to tere ko kya manega? To is hisab se main avoid kar raha tha, magar mujhe puchne laga ki do you really think that God is there? अब मैं जान छोड़ाना चाहता था. मैंने कहा आर यू गोइंग टू डाई वन डे? मुझे कहता ऑफ कोर्स एवरी वन हैज टू डाई. इतना ईमान तो है कि मौत के ऊपर उसको यकीन है. ये यकीन खुदा का यकीन है. मैंने कहा आर यू गोइंग टू डाई वन डे? ऑफ कोर्स. मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन गॉड? नो. You don't believe now in God, but after death, you find there was God, you had it. But if you believe in Him, and after death you find that there was no God, you don't lose anything. Serious ho gaya. Aaj Khuda ko maan lo, और मौत के बाद पता लगे कि खुदा नहीं है तो क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं. लेकिन आज खुदा को न मानो और मौत के बाद जब खुदा के सामने जाओगे तो वो तो पीटेगा. चुप हो गया. डीप थिंकिंग में पड़ गया. 15-20 मिनट के बाद मुझे कहता है एक्सक्यूज मी सर, You are perfectly right, sir. And I made a mistake. I think God must be worshipped. Khuda ki ibadat karni chahiye. Khuda hai. Jo nahi mante, wo nuksan mein hai. Jo nahi mante, wo nuksan mein hai. Maine ek lecture diya tha. साउथ अफ्रीका की विट वाटर स्टैंड यूनिवर्सिटी में जोहान्सबर्ग के, मैंने उनको कहा कि जो बिलीफ है इंसान का खुदा के अंदर वो उसको बड़ा मदद करता है. और वो मदद इस तरह से करता है कि इंसान जो खुदा को मानता है अपने दुख में उसकी मदद चाहता है. ए मौला, ए खुदाया, ओ गॉड, ओ अल्लाह, ओ ईश्वर, वट एवर यूर फेथ इज, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, प्लीज हेल्प मी. तो उसके अंदर जो साइकोलॉजी है उसको एक आशा होती है कि खुदा मेरी मदद करेगा. लेकिन जो आदमी नहीं मानता वो किसकी मदद मांगे? किसी की भी नहीं. वो फ्रस्ट्रेट होता है, अंदर अंदर मुंझाता है, किसको जाकर कहे कि मेरी हेल्प कर. ईमान जो है वो इंसान को हेल्पफुल होता है. और जहां ईमान नहीं वहां पीर कहते हैं अंधेरा है. और हकीकतन अंधेरा है. खुदा ताला हर अपने बंदे की मदद करता है, रहमत करता है, रोजी देता है. इसमें सारी दुनिया के मजहबों को इकट्ठा करो और मेरे मौला का करम है दीनदारों, मैं अपनी उम्र के अंदर दुनिया का कोई ऐसा मजहब बाकी नहीं कि जिसकी स्टडी नहीं की. मैं इन मजहबों को इसलिए पढ़ता रहा कि मेरा मजहब इनके सामने क्या है. मेरे हाथ में जो हीरा है वो इन दूसरे हीरों के सामने या कांच के सामने क्या कीमत रखता है. और हर दफा मुझे खुशी होती है. मेरे मजहब जैसा कोई मजहब नहीं है. दुनिया और दीन के अंदर इसमें हमें चीजें मिलती हैं. एक ऐसा मजहब बाकी रह गया था जिसको हम शिंटोइज्म कहते हैं. जापान में वो जापान के राजा को खुदा का अवतार मानते थे. मैं 63 में जापान गया शिंटो मजहब जानने के लिए. उसकी मुझे कहीं भी लिटरेचर किताबें इंग्लिश में या और जबान में न मिल सके, लेकिन शिंटो मजहब जाके मुझे और भी खुशी हुई कि हमारा मजहब तो हमारा मजहब है। हमारे मजहब जैसा कोई मजहब नहीं, हमारा दीन इस्लाम है, मजहब इस्माइली है। क्या फर्क हुआ दीन और मजहब में? दीन कहते हैं खुदा ताला ने जो हमारे लिए कानून बनाया वो उसको दीन कहते हैं, और मजहब का मतलब ये है उस पे चलने का रास्ता। सुन्नी मजहब है, शिया मजहब है, सिख मजहब है, ये सब मजहब है। दीन इस्लाम है, और इस दीन के अंदर 73 सेक्शंस हैं कि जो अपने अपने तरीके से अपने मजहब अपने दीन के ऊपर अमल करते हैं। हमारा तरीका ये है कि हम इस्माइली अपने अंदर एक बैठे हुए खुदा के नूर को जिसको हम ईमान कहते हैं हम इसके पीछे चलते हैं। सारे जितने भी 72 दूसरे फिरके हैं इस्लाम के अंदर उनमें कोई भी इमाम नहीं है। आम मुल्ला मौलवी बहुत है, काजी मुल्ला बहुत है, लेकिन वो मुल्ला भी हमारी तरह के इंसान है। हमारे अंदर एक ही इस्माइली मजहब है दीन इस्लाम में कि जिसमें खुदा का नूर परतक बैठा हुआ, परतक मीन्स हम आंखों से देख सकते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं। ये 1-to-1 बेसिस के अंदर ये जो हमारे इस्माइली मजहब के अंदर है कहीं नहीं है। कुछ भी हमें दुनिया या दीन की दौरवनी गाइडेंस चाहिए तो मौला हमारे ऊपर बैठा है। ए मोमिनों, दिसंबर 64 में इस्माइली एसोसिएशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी कराची में। हजर इमाम के 2 दिन बाकी थे उसके प्रोग्राम के, तो माँ बाप ने वो प्रोग्राम तोड़ के स्ट्रेट भाग के साथ यानी उड़ के नैरोबी आए। मैं उस वक्त दारुसलाम में रहता था, 1 घंटे की फ्लाइट है। मौला आवे तो हम रह ना सके, मैं भी नैरोबी आया, दीदार किया, मौला से मिले। अभी बात क्या बनी थी कि उस वक्त अफ्रीकन थोड़े टाइम पहले ही आजाद हुए और एशियन लोगों के मिसबिहेवियर के कारण जो अफ्रीकन थे उनके दिलों में एशियन के लिए हेट्रेड पैदा हुई, थोड़ी बहुत लूटफाट भी हुई, और उसमें एशियन का कसूर भी था। बहुत टेंशन पैदा हो गई, ऐसा लगता था कि मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। यह 64 की बात करता हूं। जमात बेहिसाब आई, आजू बाजू इर्द गिर्द के लोग भी उधर आए। नैरोबी का दरखाना ऐसा है, इधर सेंटर में खड़े रहो तो इस तरफ जाता है, इस तरफ यानी राइट एंगल है, इस तरफ औरतें बैठती हैं, इस तरफ मर्द बैठते हैं, पैक जमात खाना ऊपर नीचे। धनी माँ बाप आया, मुखी ने चेन पहनाया, कमड़िया ने बुके दिया, दुआ शीश मिली, कुरान की तिलावत हुई, गिनान शरीफ पढ़ा गया। अब मौला खड़ा हुआ फरमान करने के लिए। चेन पहना था तो उंगली से चेन को ऐसा ऐसा खेल रहे थे उससे। ये निशानी क्या थी? खुशी की निशानी थी। माइक पकड़ा, माय डियर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, खलावादान दिया, दुआ शीश दी। फिर मौला फरमाते हैं यहां की टेंस सिचुएशन के कारण और तुम्हारी घबराहट और चिंता के कारण मैंने कराची का 2 दिन अपना प्रोग्राम छोड़ दिया, कट किया, मैं इधर आया हूं तुम्हारे पास। कोई फिक्र मत करो। क्या तसल्ली है। मौला कहता है डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर यू। है कोई दुनिया में ऐसा। मौला कहता है फिक्र मत करो, मैं ही बैठा हूं तुम्हारी चिंता करूंगा। जमात राहत में आ गई। माँ बाप कहते हैं अगर जरूरत पड़ी देश को छोड़ने की, मैं बंदोबस्त करूंगा। कभी जरूरत पड़ी आई विल ब्रिंग 100 एरोप्लेन्स टू टेक यू अवे, एंड यू नो दैट आई एम कैपेबल। जरूरत पड़ेगी तो मैं 100 एरोप्लेन लेके आऊंगा, तुम सबको ले जाऊंगा, और तुमको पता है कि मैं कर सकता हूं। बताओ मुझे ऐसा है कोई दुनिया में गुरु के जो अपने मुरीदों को ये कह सके मैं बैठा हूं, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हारे गम दुख मैं ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्लीट लेके आऊंगा एरोप्लेन का, तुमको ले जाऊंगा। शांति हो गई, चेहरों का गम निकल गया, दिल का दर्द मिट गया, स्टेबिलिटी आ गई जमात के अंदर, हालत ठीक हो गई। ये 1964 की बात है। 1972 में कितने बरस के बाद, 18 बरस के बाद, नो सॉरी 6 और 8 बरस के बाद, 1972 में एक उधर रावण पैदा हुआ। रावण, हाँ, कद भी रावण जैसा था और पर्सनैलिटी भी रावण जैसी थी। ईदी अमीन युगांडा में रावण पैदा हुआ, सब एशियनों को उसने बहुत दुख दिया। उसने कहा कि यहां से 6 महीने के अंदर एशियन लोग मुल्क को खाली करो। पैसे वाले इमीजिएटली भाग गए, लोग रह गए। जमात में थोड़ा कोमोशन हुआ। क्या हुआ पता है, कुछ जमात जो रह गई, मौलाना हाजर इमाम ने सर इबू को हुक्म किया एरोप्लेन लेके सर इबू नैरोबी से कंपाला गए और अपनी जमात को उसमें प्लेन में बिठाया, नैरोबी लेके आए, दूसरी फ्लाइट की, तीसरी फ्लाइट के अंदर बहुत थोड़े आदमी बाकी थे और जगह अंदर काफी थी, तो उधर एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें मर्द हाथ जोड़ के भीख मांगते थे, हाँ अमो ने ले जाओ, अमो ने ले जाओ, और ले लिया। सरीबू ने उनको भी ले लिया। 8 बरस पहले किया हुआ वादा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं प्लेन भेजूंगा, तुमको उठा ले जाऊंगा, और उठा के ले गया। कनाडा आया, कोई लंदन रह गया, कोई अमेरिका आया, कई लोग लुट फुट के आए, कुछ थोड़े लोग थे कि जिन्हों का पैसा बाहर था। 1972 के बाद आज इस बात को ख्याल करो तो 32 ईयर्स हुए। वो लूटे फूटे ईदी अमीन के निकाले हुए युगांडन इस्माइली आज इधर मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, मिलियन डॉलर के मकान में रहते हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन छोटा से छोटा आदमी उसके पास भी मकान है, गाड़ी है। आज आप लोग यहां बैठे हुए हो, आपका जन्म इधर तो नहीं हुआ, सिवा चंद बच्चों के, बाप दादा काठियावाड़ी थे, कच्छी थे, गुजराती थे। बाप दादा के पास खाना पीना नहीं था, हमारे बाप दादा परदादा के पास खाना पीना नहीं था। हमारी उस वक्त की जो नानियां दादियां थी वो गाय बकरी का, गाय भैंस का छेन सुखा के बर्तन के तौर पे यूज करते थे, कोलसे के पैसे नहीं थे। जो शरीर पे कपड़ा था वही कपड़ा था, उसी में नहा के नचोड़ लेते थे, खेती करते थे, भैंस का दूध बेचते थे, मजूरी करते थे, आज से 4-5 पीढ़ी पहले, 100-150 बरस पहले मौलाना हसन अली शाह के टाइम के अंदर हमारी हालत यह थी, वजीर इस्माइल खानजी के साथ शाह पीर अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह माँ बाप घोड़े पे बैठे हैं और जमात के अमरदार पांव से चल रहे हैं। जूनागढ़ के गांव के बाहर निकले तो बहुत सी औरतें गाय भैंस का छेन इकट्ठा कर रही थी। जब मौला के घोड़े देखे तो सबने मुंह फिरा लिया। हसन अली शाह माँ बाप ईरान से थे, उनको बहुत बुरा लगा। इस्माइल, जी सरकार, ये कैसी औरतें हैं? कहते मौला, ये तेरी बच्चियां हैं। क्या कहते हो, ये लोग मेरे मुरीद हैं? तो फिर इन्होंने मुंह क्यों फिराया? कहते मौला, इनके हाथ गंदे हैं, गाय का भैंस का छेन यानी इकट्ठा कर रही है, इस गंदी सूरत में उन्होंने मुंह फिरा लिया कि क्या मुंह दिखाए। माँ बाप घोड़े पे बैठा बैठा मुंह नीचा कर लिया, आंखों से आंसू निकले। इस्माइल छिसा, वापस चलो। वापस आ गए, शाम तक कोई बात नहीं की, खाना नहीं खाया। शाम को जमात खाने आए, वजीर इस्माइल हाथ बांधे खड़ा है, जमात को मिले, दुआ सीस्ती। वजीर को कहते हैं, मुझे सबके घरों में जाना है। नहीं या मौला, ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मौला, उनके घर है ही नहीं तो कैसे रहते हैं? मिट्टी की झोपड़ियां बनाई हैं और ऊपर पत्तों की छत है, जमीन पे सोते हैं, घर है ही नहीं, तू जाएगा किधर? हमको जाना है। वजीर, मैं जाऊंगा। पर मौला, उनके घर में कोई शीश नहीं, बैठने की भी नहीं, मैं ये जाना है, बंदोबस्त करो। अच्छा, धनी ये भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ कि मुझे हर घर में जाना है। मुखी कमरिया ने सबको कहा कि मौला, तुम्हारे घरों में आऊंगे। किसकी ताकत है? ये चीज सुन के खुशी भी होवे और रोवे भी। खुशी ये कि मेरा मौला घर पे आता है, और रोना इसलिए है कि घर घर जैसा है ही नहीं। शाह पीर दोनों, मुखी कमरिया, वजीर इस्माइल घर में जाते हैं, नम के जाते हैं। इतना तो दरवाजा है, अंदर बैठने की कोई चीज नहीं। मौलाना हसन अली शाह माँ बाप शाही दबदबे में है, नूरी जामे में है, जमाने के इमाम है, दीन और दुनिया का बादशाह, वो झोंपड़े में खड़ा है, लोग पांव में बैठे हैं, दुआ शीश दी, हमको कुछ खिलाओ। ओहो, हाजे गगड़ गए, हमको कुछ खिलाओ। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, तेरे को क्या खिलावे, हमको कुछ खिलाओ। वजीर कहता है गुजराती में कि कुछ भी आटा, अनाज, चावल, बाजरा, कुछ भी है थोड़ा सा लेके आओ। कच्चे चावल लेके आए, कच्चे चावल एक छोटी सी प्लेट में लेके आए। मौला ने उसमें से दो दाने मुंह में डाले, अली शाह माँ बाप ने खाए, دعا دی, بہت برکت ہو کے دوسرے گھر میں گئے. اس کو نیوز مل چکی تھی, تھوڑا سا باجرہ لے آئے, کسی کے گھر میں آتا تھا تو آٹے کی چٹکی منہ میں ڈالی. سب کے گھروں میں جا کے کچے چاول کھائے, باجری کچی کھائے, گاؤں کچا کھایا, آٹا کچا کھایا, لیکن سب کے گھر میں گیا. ان کی اولاد ہم سب بیٹھے ہیں یہاں, یہ ان کی اولاد ہے کہ جن کے دادا پردادا نے کچے چاول کھائے. ایسا مذہب دنیا میں کہیں نہیں. اس کی دعا آشیش نے آہستہ 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 برکت دینی شروع کی, دھندے ملے. پھر یہ بات ہے 1844-45 کی, 25 برس بعد 1870 میں, 1877 کے سال میں مولانا حسن علی شاہ اور پیر علی شاہ کچھ گئے. جیسی کاٹھیا واڑ کے اندر غریبی اور ضلالت کی حالت تھی جماعت کی, ایسی ہی خراب حالت کچھ میں تھی. اور کاٹھیا واڑ میں اچھا ہے بہت کچھ, لیکن کچھ تو رن ہی رن ہے. حسن علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں, میرے بچوں تم میں جو جوان لوگ ہیں نا, افریقہ جاؤ. پھر تو مولا چلے آئے بامبے میں, دو چار مہینے کے بعد 40 اسماعیلی, اس میں ایک 12 برس کا لڑکا تھا. یہ لوگوں نے ایک دھو یعنی اس میں سٹیمر نہیں ہوتی, وہ ہوا سے چلتے ہیں. اس ڈھو کے اندر بامبے آئے اور کیپٹن نے کہا کہ کھانا پینا اپنا لے لو, جو کچھ بھی, یہاں سے ہم جب جائیں گے تو زنجیبار تک شاید ایک مہینہ لگے. گاؤں میں آئے, پتہ لگا کہ حسن علی شاہ ماں باپ آج دیدار دیتے ہیں. سب کو دو کو بلایا اور ان سب نے واڑی میں جا کے دیدار کیا. مولا نے دیکھا کہ یہ کچھی لوگ آئے ہیں, نزدیک بلایا, باتیں پوچھی کہ مولا ہم زنجیبار جاتے ہیں. اتنا خوش ہوا مولا, حسن علی شاہ ماں باپ اتنا راضی ہوا, بہت دعائیں دی اور فرمایا جب ہی وہاں پہنچو تو مکھی کو میرا میسج دینا کہ شام کی دعا جو ہم پہلی دعا پڑھتے ہیں, اس کے بعد چار تسبیحاں نکالا کرو, یا اللہ, یا وہاب, یا علی, اللہ الصمد. مکھی کو کہنا میرا فرمان ہے چار تسبیحاں دعا کے بعد نکالا کرو, دین و دنیا میں تمہاری آبادی ہوگی. یہ لوگ آئے, مکھی نے تسبیحاں چالو کی. 1870 میں یہ تسبیحاں چالو کی, لیکن 1905 میں شاہ سلطان محمد نے فرمان کیا کہ آج سے یہ تسبیح شام کی دعا کے بعد نہیں, صبح کی دعا کے بعد پڑھا کرو. اور آج ہم 1905 سے 99 ایئرز ہوئے, ہم یہ تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں. ان تسبیحوں میں افریقہ کی جماعت چڑھتی رہی, اور اس 100 برس کے اندر ہندوستان پاکستان کی دوسری جماعتوں سے افریقہ کی جماعت زیادہ ایڈوانس رہی, ایجوکیشن میں بھی, مذہب میں بھی. میں یہ ہسٹری اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ریئلی سچا مالک ہے, دنیا میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی ہاتھ پکڑنے کا وعدہ کیا ہے. 1945 میں مولانا سلطان محمد شاہ ممبسا آئے, ممبسا مسلمانوں نے صاحب کو ایک ریسپشن دی. ایک بڑا سینما تھا, وہ سینما کے ہال میں कुछ लगभग 1200 जितने मुसलमान इकट्ठे हुए, इस्माइली भी थे, लीडर्स थे, अरब थे, मस्कती थे, इसनाशरी थे, सुन्नी थे, वहाबी थे, मुसलमानों के तमाम सेक्शन थे उधर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं बिगिनिंग उसी इस तरह है कि इस्लाम ये कहता है कि हम मरने के बाद अकाउंटेबल हैं, खुदा हमारा हिसाब मांगेगा। सब ने हां की। खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? सब की गर्दनें नीचे। सुल्तान मशहद सेकंड टाइम रिपीट किया, मरने के बाद खुदा पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, कोई ना बोला। तीसरी दफा फरमाते हैं कि जो इस्माइली लोग हैं उनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा, तुम लोग क्या कहोगे? है किसी की ताकत ये कहे कि एक दो इस्माइली नहीं, लाखों करोड़ों इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा? किसी की ताकत नहीं थी। सुन्नी, शिया, इसनाशरी, मौलवी, मुल्ला, मौल, सब लोग थे। क्रीम थी मुसलमान कौम की। उसमें ये कहता है कि मैं इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, तुम क्या कहोगे? कोई की जवाब नहीं खुली। ये हमारे लिए बैठा है और वो सच्चा है। 1400 बरस से यही कहता चला आता है, मैं होल्डर ऑफ नूर इमामत हूं, अली नबी का मैं वारसदार हूं। 1400 बरस से चला, 1400 बरस तक झूठ नहीं चलता। इस 1400 बरस में 32 लोगों ने इजिप्ट में, सूडान में, मोरक्को में, अरबस्तान में, ईरान में रसूलुल्लाह के बाद 32 लोगों ने इमामत का दावा किया। एक दो ने तो नबूवत का दावा किया। आज उनकी नस्ल भी मिलती नहीं, कोई बाल बच्चा भी मिलता नहीं। खाक हो गए, बर्बाद हो गए, जल उनके पूरे हो गए, किसी की नहीं चली। लेकिन ये 1400 साल से कहता है मैं इमाम हूं। एक दिन झूठ चले, एक महीना चले, एक बरस चले, 10 बरस चले, 100 बरस चले, 1400 बरस झूठ नहीं चल सकता। इसके बगैर और कोई नहीं, इसके बगैर कोई नहीं दीनदार। बोलो मेरे साथ पाठ बोलो, है जी तुझ बिना कोई अवरना, स्वामी अमने छे शाह माता सलामत के साथ कराची गए 51 में। उस वक्त जूना जमा था खारा दर में दरखाना, उसके पीछे हैरिस रोड है। हैरिस रोड के उधर सामने की साइड में शामियाना बांधा, जमात इधर आके बैठी। मुखे ने पूछा, खुदावंद शुरू करूं? हाँ, कुरान पढ़ा गया। एक लड़की 8-9 बरस की है, उसका गिनान का वारा था। लड़की गिनान बोल रही है, साहेब जी तू मोरे मन भावे। जब ही उसने पाठ शुरू किया, मौला बैठे थे, लकड़ी ऐसा बैठी थी, लकड़ी के ऊपर ऐसा वो लकड़ी का हाथा है, उसके ऊपर ऐसा हाथ रख के मौला बैठे थे। लड़की बोल रही है, जय जय मांगू ते वो लड़की बोले ना तो सब ऐसा लकड़ी ऊपर करके नीचे करके ऊपर अलबत अलबत जो मांगेगा हम देंगे। बहुत प्यार किया उसको, लेकिन वो बोल रही कि जे जे मांगू ते तो ही देवे, सब कहते अलबत अलबत जो मांगोगे देंगे। ऐसा मौला है। सतगुरु कह रहे सोना बेची साजन लीजिए, अनेरो रूपा केरे मोल वैसा जन किम छोड़िए भाई लोका केरे बोल रे। ये साजन हम लोगों के कहने से इसको छोड़ देंगे? अरे नहीं, इसके लिए तो जान जाए भले जाए, जो जीव जावे शाह का नाम न छोड़ो, दर सिर करवत अंग न मोड़ो। हमारा मजहब जो है वो मोहब्बत और इश्क का मजहब है। हमारे मजहब की जो बेसिस है वो नूर है। कब नसीब है वो इस्माइली के जिसने अपने मजहब को जाना नहीं समझा नहीं, वो भटकता है। हैं ऐसे इस्माइली, कोई हसन अली के पास जाते हैं, कोई फातिमा के पास जाते हैं, कोई सकीना के पास जाते हैं, इस धनी को छोड़ के कहा, इसकी मोहब्बत में मर जाए, इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है। अपने मजहब को पालो, अपने मजहब का स्वाद चखो। मैं अभी बोल के आया हूं कि मुंह में चॉकलेट जिस तरह डालते हो और आस्ते आस्ते चूसते रहते हो, उसका मजा आता है। दीनदारों, अपने मजहब को चॉकलेट की तरह चूस चूस के उसका स्वाद लो। इस मजहब में आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन सच्चे बनो। डॉलर की मोहब्बत में इमाम की मोहब्बत को भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की खाओ। वो पैसा किस काम का कि जो पैसा हमको दुख देवे। मैं बुद्ध हाल लोगों को कहता हूं कि हमारे गिनानों में कोई चीज बाकी नहीं रखी। इस अदर दिन कहते हैं, ते सोनू गोल्ड सूसू पेरिये जेने सोने त्रुठे कान। वो सोना के कानों की बालियां कान को दुख देवे, वो भी सदर दिन कहते हैं, ऐसा सोना किस काम का कि जेने सोने त्रुठे कान। वो डॉलर किस काम का के जो हमको मौला से दूर कर देवे। ये मजहब प्रेम का मजहब है। इस मजहब के अंदर दुनिया मिलती है, लेकिन पहली चीज ऊंचे में ऊंची चीज मौला की मोहब्बत और नूर है। अपनी रूहानी साइड को मजबूत करो, दुनिया में कभी दुखी नहीं बनोगे। लेकिन मजहब मजबूत होना चाहिए, हर जगह वो काम आएगा, हर जगह मदद करेगा। लोभ लालच मन मोह सो लगत है, दीन के रास और टले। जब ये लालच मन में आ जाता है, मोह ममता पैदा हो जाती है, तो आदमी दीन से हट जाता है, फिर दुखी होता है। मैंने फिर ये कहा, रिपीट करके कहता हूं, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। पैसे की मोहब्बत में अपना मजहब मत भूल जाओ। आपके अंदर इधर मैं जमात खाने में एंटर हुआ हूं, मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आई। स्पिरिचुअली आप लोग कमजोर हो, हैं आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत वाली बाइयां हैं, इबादत वाले मर्द हैं। मैं हिसाब करना नहीं चाहता और मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मेजॉरिटी आप लोग अपने मजहब के ऊपर मजबूत नहीं हो। ए मोमिनो, मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आपको जगाने आया हूं, कल मैं एक बात करते करते रो पड़ा। मौलाना सुल्तान अहमद शाह कपूरथला आए 1945 में। कपूरथला पंजाब में एक सिख की स्टेट है और वो मौला का आशिक समझ लो ऐसा। डायमंड जुबली का टाइम था तो मौला को आजजी करके अपनी स्टेट में ले गया, कपूरथला स्टेट में गया। मौला ने जमात को कहा कि इधर आओ, 8-10 हजार इस्माइली जमात के, पंजाब जमात के, फ्रंटियर जमात के कपूरथला गए। राजा ने डोंडी पिटवाई, यानी अनाउंस कराया कि नामदार आगा खान के जो मुरीद हैं वो इधर उनके धर्म गुरु को मिलने आते हैं। ये ऐलान किया जाता है राजा की तरफ से कि वो आपकी दुकान के ऊपर से कुछ भी खाए पिए उनसे पैसे नहीं लेना, और उसका हिसाब आप राजा की तिजोरी में। राजा कहता है वो पैसे मैं दूंगा, 10 हजार आदमी कहीं जावे मेरे को लस्सी पीनी है और खुशी से कितने पैसे, ये तो राजा की तरफ से 10 हजार आदमियों को राजा ने खाना खिलाया। मौला आए जमात में, बैठे हैं, यूं देख रहे हैं, एक एक की आंख में आंख मिला के मौला देख रहे हैं। बोला कुछ नहीं, चुप रहा। पहले आके दुआ सीख दी, लेकिन बाद में मौला सबके साथ आंखें मिलाए। मुंह उदास हो गया। थोड़ी बार के बाद कहते हैं मौला, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मेरा दिल चाहता है कि तुम एक एक को, अपने रूहानी बच्चे को एक एक को मैं अपनी गोद में बिठा के प्यार करूं। वो पड़ा, लेकिन क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल चाहता है तुम एक एक को अपनी गोद में बिठा के प्यार करो। ऐसा मौला किधर और नजर आता है आपको, वो हमें इतना प्यार करता है। उसके पास बेहिसाब पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के हिसाब से नामना कितनी है आगा खान की, है कोई चीज की कमी? फिर भी जमात के लिए इधर से उधर भागता है, उधर से इधर भागता है। नवा प्लेन लिया मौला ने, जो ना प्लेन था वो प्रिंस रहीम को दे दिया। अभी इधर से उधर, उधर से इधर, रात रात भर जागता है। क्या पड़ी है उसको, खाए पिए ऐश करे मजे करे, बेहिसाब पैसा, इतनी नाम ठान, लेकिन आगा खान सब घूम रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है। किसके लिए? रूहानी बच्चों के लिए। मौलाना हजर इमाम सिल्वर जुबली पूरी हुई, लीडर्स को मौला ने एक डिनर दिया। बातें निकलते निकलते 20 बरस की बात है, मौला कहते हैं इंशाल्लाह नॉर्थ अमेरिका में मेरे मुरीद बहुत मालदार बनेंगे, बहुत मालदार बनेंगे, लेकिन मुझे डर है मुझे भूल न जाए। लानत ऐसे पैसे, ए मौला वो पैसा हमें नहीं चाहिए कि जिस पैसे से हम तुझे भूल जाए। एक दिन आंख बंद हो जाएगी, इमरजेंसी जिस गाड़ियां रह जाएंगी, मिलियन डॉलर रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, हाथ की अंगूठी होगी वो भी निकाल लेंगे, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिट्टी बड़ी जैसे। इस पैसे के लिए हम अपने हाजिर इमाम को भूल जाएं? नहीं, नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। कुछ कमबख्त बदनसीब हमारी जमात में हैं कि जो मजहब के विरुद्ध काम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ या मौला उनके दिलों में भी नूर डाल दे, उनको अपनी भूल का प्रायश्चित करने की ताकत दे। या मौला अपने मुरीदों को दीन और दुनिया में अपने छत्र छाया में रख। मौला क्या चाहते हैं हमसे, कभी सोचा मौला हमसे क्या चाहते हैं? पैसा तो बेहिसाब है, पैसे तो देता है, अफ्रीका में तंजानिया के अंदर 1200 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है, केनिया में 80 शिलिंग का एक डॉलर है, युगांडा में 2000 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है, 46 रुपीस इंडिया के एक डॉलर लाते हैं, पाकिस्तान के 50 रुपए का एक डॉलर है। ये जो कारसाजी मिलती है मुरीदों से, ये तंजानिया का शिलिंग क्या काम है? कितने डॉलर, 1200 डॉलर शिलिंग का एक डॉलर क्या करेगा? मौला खीसे से उधर पैसे देते हैं काउंसिलों को और दूसरी ग्रांट्स काम चलाने के लिए, रिपेयर के लिए जमात खाने बनते हैं, मौला के खीसे से पैसे जाते हैं, उसके पास पैसा बहुत है। हम उसको सुल्तान मोहम्मद शाह के शब्द बोलूं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, सारे हिंदुस्तान के जितने भी कारसाजी तुम मुझे देते हो मेरे एक घंटे का खर्च है, एक घंटे का। आज करोड़ों के हिसाब से ग्रांट दे रहा है हमको लाभ देने के लिए, हमारे अमेरिकन या कैनेडियन डॉलर हाजिर इमाम कबूल करता है और ये डॉलर उधर खर्च होते हैं हमको फायदा देने के लिए, और उसका बदला हमको मिलता है। इधर जमात बहुत बढ़ेगी, संख्या में इतनी नहीं बढ़ेगी लेकिन माल में बहुत बढ़ेगी, मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे। मगर याद रखो दीनदारों, एक आदमी चलते चलते गिर पड़े, थोड़ी चोट लगती है, बाइसिकल चलते चलते गिर पड़े तो ज्यादा चोट लगती है, मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़े तो हाथ पांव टूट जाते हैं, लेकिन एरोप्लेन के अंदर अगर एक्सीडेंट हो गया तो मामला गया, कब्र में चला गया। तो जैसे स्पीड बढ़ जाएगी तैसे एक्सीडेंट की चोट ज्यादा होगी, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। जो जो दुनिया में आगे बढ़ोगे, मालदार बनोगे, पैसे वाले बनोगे, तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना, जरा सी भूल में ऐसा एक्सीडेंट होगा, खाक सिया हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वो पैसा कोई काम नहीं आएगा। हमारा जो मजहब है वो नेकी का मजहब है, रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, ये फरिश्तों का मजहब है, ये नबियों का मजहब है। इस मजहब के हिसाब से चलो, दुनिया में भी बादशाह बनोगे, आखिरत में भी बादशाह बनोगे। और अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों को दुनिया में भी गार्डन दूंगा और मौत के बाद भी गार्डन दूंगा, गार्डन का मतलब बहिश्त। फिर कहता हूं आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, रात को सो जाओ कोई हम गम नहीं, लेकिन लोभ लालच करके, बदी बुराई करके, ऊंधे धंधे करके, खराब रास्ते करके, झूठ बोल के, फरेब करके, दगा करके जो डॉलर कमाओगे वो डॉलर चमड़ी उतारेगा, चमड़ी, क्योंकि इस्माइली मजहब के अंदर सजा भी मौत है। लेकिन अगर इमाम के फरमान के ऊपर चलते रहोगे, और इंशाल्लाह मौला करे आप चलो, मेरी दुआएं हैं, मैं उनको डरा रहा हूं कि जो थोड़े से चूहे की तरह जमात के अंदर है, ऊंदर की तरह छुप छुप के बदियां करते हैं, उनको कह रहा हूं जमात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन राज करोगे। एक और बात साथ साथ कह दूं, और मैं कहता चला आया हूं, आज 5-6 साल से ये मिलेनियम आया नवा, तो मैंने पहली तारीख सन 2000 नॉर्थ के जमात खाने वैनकूवर में मैंने 1.25 घंटा जो वाइज की थी, उसका थीम ये था कि ये मिलेनियम दुख वाला है, ये खास करके हमारी ये जो सदी है, ये सेंचुरी दुखों से भरी हुई है। अभी तो खाली 4 बरस हुए हैं, 96 साल बाकी हैं इस सेंचुरी के। इसमें गुना बढ़ते जाएंगे, धरती कम बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, मन की अशांति बढ़ेगी, इस तरह से पागलपन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आसमान से बिजलियां गिरेगी, आग लगेगी, एपिडेमिक फैलेगी, बीमारी फैलेगी, भूखमरगा फैलेगा, बड़ी बड़ी आफतें आएंगी इस सेंचुरी के अंदर। फिर माँ बाप कहते हैं कि विखड़ी वेला माए दिल ठोर नहीं रहते, ये विखड़ी वेला आ रही है, पापों से भरी हुई, दिन ब दिन पाप बढ़ते जाएंगे। इनमें एक छतरी है और वो छतरी जमात खाना है। जमात खाने आओ, कल युग की हवाओं, कल युग की खराबियों से बचे रहोगे। अपने औलाद को सिखाओ कि ये प्रोटेक्शन की जगह है, जमात खाने रहो सब। जमात खाने आते वक्त कभी धंधा रोजगार बंद करना पड़ता है तो बंद करो। सिर्फ जॉब करने वालों को इमाम ने कहा है, ओके तुम्हारे सेठ की तो तुम तनख्वाह खाते हो तो भले, या वो बच्चे के जो शाम के वक्त इतने प्रसिद्ध हैं अपने लेसन के अंदर, ओके, लेकिन खाने रोज आओ, रोज जमात खाने रोज आओ। कभी देर से आते हो तो देर से आओ, कोई बहुत सख्त काम है तो पहली दुआ पढ़ के चले जाओ, लेकिन जमात खाने आओ, इधर आके सजदा करो, उसको कहो मौला मैं आया हूं, मेरा सलाम है, दिनों दुनिया में सुखी रहोगे, आबाद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, मौला दीन में दुनिया में आपकी नियामतें देवे, रहमतें देवे, बरकतें देवे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपके दुश्मन दफा करे, मौला किसी का मोहताज ना करे, मौला दीनों दुनिया के अंदर आपका हाथ पकड़ के रखे, इस तरह रखे कि जैसे माँ की गोद में दूध पीता बच्चा बैठा है, इस तरह मौला आपको रखे, सुखी आबाद रहे।